الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ آج کا ہمارا جو تربیتی یہ وقت ہے اس میں ہم مراقبات میں دوارے ثلاثہ سے آگے کی بات یا اگلے سبق پر پہنچے ہیں مقام اقربیت پر دوارے ثلاثہ کا سبق کرایا جاتا ہے جنہیں دائرہ محبت بھی کہتے ہیں دوارے ثلاثہ بھی کہتے ہیں اور جب یہ تیسرا دائرہ کر لیا جاتا ہے اور اس میں سالک کو تسبیح جو ہے وہ کرائی جاتی ہے کہ سالک زبانی بھی کرتا ہے دل سے بھی کرتا ہے روحانی طور پہ بھی پڑھتا ہے اور ایک صورت میں نے عرض کی تھی پچھلے کسی تربیتی جو ہمارا یہ وقت ہے اس میں کسی لطائف میں بات کرتے ہوئے یا مراقبات میں بلکہ مراقبات میں بات کرتے ہوئے یہ بات عرض کی تھی کہ جب تسبیح سالک کرتا ہے تو اللہ جل شانہ قبول فرمائیں اور یہ کیفیت عطا فرمائیں کہ جہاں سالک وہ تسبیح بیٹھا کر رہا ہوتا ہے یا پڑھ رہا ہوتا ہے آہستہ آہستہ گرد و پیش ہر شے اس تسبیح میں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے کتنی دیر بیٹھا کہاں تک وہ وسعت اس میں پیدا ہوتی چلی گئی اللہ کریم بہتر جانتے ہیں مختلف حال ہیں ہر ایک کا حال اپنا ہے ہر ایک پر اللہ کی عطا اپنی ہے اور عبادات جو اجتماعی ہیں اجتماعی عبادات کے فوائد میں ایک یہ فائدہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب اجتماعی طور پر ذکر کی محفل سجتی ہے تو اس میں ہر مزاج کا ہر خلوص کے درجے کا ہر طلب کا ہر سالک کا جو اپنے اللہ سے تعلق ہے وہ ایک الگ الگ ہے تو ایک گلدستہ بن جاتا ہے کس کا کتنا تعلق ہے یہ اللہ کریم بہتر جانتے ہیں بندہ جانتا ہے کہ کتنی طلب ہے اور کتنا صدق دل ہے اس کے اندر تو وہ جو اللہ اور بندے کے ماں بہن تعلق ہے اس پر اللہ کریم کی رضا نصیب ہوتی ہے تو بے شک ہم کمزور خطہ کار لیکن ایک محفل سجی ہے اور اس میں کسی کو شرف قبولیت نصیب ہو رہی ہے اور ظاہراً ہی صحیح اس کے ساتھ اگر کوئی بیٹھا ہے تو اس کی شان کریمی کہ یہ نہیں سمجھ آتی کہ ایک کو عطا فرما دے گا اور دوسرے کو نہیں فرمائے تو اس کی شان کریمی ہے رب العالمین ہے اسی طرح جب کیفیت پر بات آتی ہے تو یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بات اگر بیان کی گئی ہے تو اسے سالک کیوں محسوس نہیں کر رہا اس کے ساتھ بے شمار اور پہلو شامل ہوتے ہیں تو اس لیے یہ نقطہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ جب بھی کیفیات کی بات ہوگی پہرا وہی ہوگا حدود و قیود وہی ہوں گی جو اس مراقبے کی ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہاں احدیت کا ہے تو وہاں اسے مراقب اقربیت کی کیفیات محسوس ہوں ایسا نہیں ہوں گی احادیت ہی کی لیکن ان احادیت کی جو کیفیات ہیں ہر ایک کی اپنی ہیں تو پہرا یا حدود وہی رہتی ہیں لیکن اس کے اندر ایک کیفیت کا بہر جو ہے وہ ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے چونکہ اکثر ہمارے سامنے جو چیزیں موجود ہیں وہ مشائخ اعظام کے بیان کردہ موجود ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسی کے تحت بات ہو اس سے تجاوز نہ ہو زندگی محنت فرمائی انہوں نے اللہ کریم کے نیک لوگ اللہ کریم کے ان کی جو امور ہیں وہ قبول فرمائے اور انہیں درجات عطا فرمائے اور بلند درجات عطا فرمائے ہم کمزور ہیں ہمیں یہ ادراک ہے कि किसी चीज़ को हम अपनी समझ के तहत जांचना चाहेंगे तो खता का ज़्यादा ख़दशा है। तो जब भी मशाइख की बात आती है तो वो जिस कैफियत को जिस पहलू पर उन्होंने बयान फरमाया उसकी हदूदों को यूँ तो उसके तहत रहती हैं, बैन ही वो कैफियत हम समझ पाते हैं या नहीं ये एक अलग बात, एक पहलू। दूसरा पहलू, हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब इसरार व तंजील तहरीर फरमाई थी पहली तफसीर, तो किसी आलिम ने उन्हें ख़त लिखा था कि हजरत आपने तहरीर में असरार इलाही बहुत सारे बयान कर दिए हैं, तो ये आम आदमी की समझ की बात नहीं होती, वो धोखा खाता है। और फिर एक चीज़ जो इसरार है उसे आपने तहरीर कर दिया, बयान कर दिया। तो उन्होंने फरमाया इसरार तो मियाँ रहा नहीं जब अल्लाह करीम ने मुझे बता दिया, इसरार तो रहा नहीं कि जी गैब की बात है या पोशीदा बात है, तो पोशीदगी तो रही नहीं बात की, तो अल्लाह ने मुझे बताई, एक बात। फिर दूसरा, आपको क्या मालूम कि जो कुछ मुझे नसीब हुआ वो मैंने सारा बोला है या उसमें से कुछ बोला। तो इसी तरह जब कैफियत की बात आती है तो बेशुमार पहलू ऐसे हैं जो शायद नहीं भी बोले जाते। अभी मुराकबात की बात हो रही है तो जो मुराकबात कराए जा रहे हैं इनके साथ और मुराकबात भी थे जो वक़्त के साथ ज़रूरत नहीं महसूस की गई कि ये सालक को कराए जाए। इन्हीं मुराकबात सलासा में भी बातें हैं, इन्हीं दायरे सलासा में हर दायरे के अंदर की एक कैफियत का बयान था, लेकिन चूंकि जो चीज़ें ज़रूरी और जिसके हम अहल थे वो चीज़ें मशायख ने उसकी तरबियत दे रहे हैं, और जो ऐसी थी जो जिसकी हम ना भी करें तो खैर है और जो कर रहे हैं वो रासिख करें, तो इसलिए उसे वो फरमाएगा। वरना तो सालिक को उस कैफियत से भी आशनाक कराया जाता है जो जिस पर बात आती है सारी, सारे अमल के आकर जिस पर आकर ना नुक्ता आता है ना इख्तिताम का, मौत का, मुराकबे मौत कराया जाता है, रुयत अशकाल कराई जाती है, मुख्तलिफ मुराकबात थे जो शुरू में कराए गए लेकिन फिर हजरत बड़े हजरत ने ही उन्हें रोक दिया था, फिर हजरत जी ने तो ये जो मुशाहिदा और कशफ के पहलू हैं उनको और सख्ती से रोक दिया, चूँकि ये बहुत बड़ा इम्तिहान होता है और दो पहलू से इम्तिहान होता है। एक पहलू तो बंदे को समझने में कहीं ठोकर लग गई तो वो समझ बैठा वो बात जो तजावज़ है तो कहीं ऐसा ना हो कि वो ईमान से ही चला जाए। दूसरा, जब बंदा मुशाहिदा कर रहा होता है तो अपनी इनफरादियत महसूस करना शुरू कर दे, किब्र अल्लाह की सिफत है और ये ऐसी गलती और ऐसी ख़ता है कि अगर इसका ख्याल ना रखा जाए तो ये बिल्कुल जो आमाल है उन्हें उड़ा कर रख देते, गज़ब इलाही को आवाज़ देने की बात। तो यहाँ हमारा आज का जो सबक है ये वे मुराकबे इसमें ज़ाहिर व बातिन, दवायर सलासा के बाद ये सबक आता है, और जब दवायर पर सालिक तस्बीह करता रहता है और अपनी तवज्जो रखता है और उसे शेख की तवज्जो रहती है, एक तसलसल है ये तवज्जो का उसे नसीब रहता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो रासिख होना शुरू हो जाए। दवायर के असबाक में जो दवायर के अनवारात हैं वो नफ्स पर पड़ रहे होते हैं और छन छन कर आ रहे होते हैं और नफ्स में जज़ब होते चले जा रहे हैं, लेकिन जब वो मुराकबा इसमें ज़ाहिर व बातिन में जाता है तो सर ता पा जो रूह है उसके सर ता पा वो सारे अनवारात उसे ऐसे ढांपना भी शुरू कर देते हैं, अंदर दाखिल होना शुरू हो जाते हैं, अंदर बाहर आगे पीछे वो अनवारात की ऐसी कैफियत होती है कि वो अनवारात और रूह एक तरह की होना शुरू हो जाती है। और इतनी अता है जिसे पैमाना नहीं दिया जा सकता कि ये अनवारात की कैफियत जो दवायर सलासा से मुनक्किस होकर पूरे रूह को मुनव्वर कर रही है, रोशन कर रही है, इतनी शदीद होती है कि रूह पर जब ये वारद हो रही होती है तो वजूद के अंदर भी एहसास आना शुरू हो जाता है, इसकी हिद्दत महसूस होना शुरू हो जाती है, रेशा रेशा जो है उसके अंदर एक ऐसी हरकत महसूस होती है कि एहसास आ जाता है कि अनवारात की शिद्दत पूरे वजूद पर पड़ रही है। और जब ये शिद्दत वजूद पर पड़ती है तो उससे रूह पहले ही ऐसा हिस्सा है कि वो इंतहाई मतलब गैर मरी तो हिस्से हैं ही हैं, लेकिन उसके अंदर लताफत है, लतीफ है, इतनी लतीफ है कि उसे इस तरह ज़ाहरी हिस्सों से छुआ नहीं जा सकता। तो वो लतीफ रूह जो है वो लतीफ तर होना शुरू हो जाती है इस मुराकबे में, और जितनी वो लतीफ तर होना शुरू हो जाती है इतना उसे कुव्वत परवाज जो है उसके अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है। और ये वो सबक है जो बाला मनाजल तक जाने के लिए जो इस्तदाद है रूह में वो यहाँ से पैदा हो। तो जितने अनवारात दवायर के रूह जज़ब करती है इतनी लताफत बढ़ती है और इतनी उसमें कुव्वत परवाज बढ़ती है, और जितनी ये कुव्वत परवाज बढ़ती है ये सारी उसे मददगार साबित होती है बाला मनाजल तक, जहाँ तक कोई सबक जा रहा है जिसका वहाँ तक उसके अंदर जो कुव्वत परवाज में ताकत का सबब है वो यहाँ से इब्तदा हो। रूह अर्ज किया वैसे ही लतीफ है तो यहाँ से लतीफ तर होना शुरू हो जाती है, और जब ये लतीफ तर की कैफियत में आती है तो इसमें मशाइख के जो बयान हैं या जो तहरीरें हैं या जो रहनुमाइयाँ उनमें ऐसा भी है कि ऐसा समझे जैसे रूह को पर नसीब हो गए हो कि वो आसानी से कुर्ब इलाही की तरफ उड़ सके। तो मुराद ये है कि इतनी लताफत है कि उसे परवाज में फिर सहूलत मिलती है, आसानी मिलती है। अब जब इस लतीफ़ इस मुराकबे से ये लताफत बढ़ती है और आगे मुराकबात नसीब होते हैं तो फनाफिर रसूल की कैफियत पर फिर अल्लाह करीम वो अता फरमाते हैं कि उसके बाद फिर कुर्ब इलाही की मनाजिल जो हैं उसमें मज़ीद कुव्वत नसीब होती है। फनाफिर रसूल की कैफियत जो है वो सबब बनती है साले की रूह को बहुत बड़ी ताकत। अब अर्शी मनाजल हैं, अर्शी मनाजल से गुजरा कोई आलम अमर में पहुंचा, हजरत बड़े हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे कि अगर कोई आलम अमर के असबाब को पहुंचा तो मियां अभी तो तू घर पहुंचा है जहां से तेरी रूह आई थी। इसका मतलब है कि इससे आगे अब कोशिश कर ताकि कुर्ब नसीब हो, यहां से तो तू आया था अभी तो तू घर अपने पहुंचा। तो ये कहने की बात जो है ये बड़ा बारीक एक मकसद रखती है। अल्लाह करीम इसकी बारीकी और इसकी नज़ाकत की जो समझ है वो अता फरमाए। फिर जब आलम अमर की दवायर से रूह गुजरती जाती है तो हर आने वाला जो सबक है वो रूह को और तवाना करता है और ताकत देता है। बिल्कुल इसी तरह कि जिस इबादत को शर्फ़ कबूलियत नसीब होती है उसका आखरत में इनाम क्या होगा, सवाब क्या होगा, कितना होगा, कैसे होगा, ये एक बात। लेकिन दुनिया में जो उसका मौके पर अजर नसीब होता है वो ये होता है कि मज़ीद इत्तबा की सूरत नसीब होती है, मज़ीद दीन इस्लाम पर अमल पैरा होने की जो कैफियत है या सूरत है वो इंसान को नसीब होना शुरू हो जाती है। इसी तरह जब रूह मुराकबात में से गुजरती जाती है तो उसके अंदर और कुव्वत पैदा होना शुरू हो जाती है, और नीचे जितनी बुनियादी हिस्से हैं लताइफ हैं शुरू के मुराकबात हैं ये बुनियादें और मजबूत होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बुलंद इमारत के लिए मजबूत बुनियाद ज़रूरी है। तो लताइफ तक वापस कलब तक जो है उसका रासिख होना और मजबूत होना शुरू हो जाता है। एक तो यहाँ से है ना जी कि बंदा बुनियाद को मजबूत लेकर उठा, फिर जब इन असबाक और बाला मनाजल की बात आती है तो वापस एक एक हिस्से तक ये तकवीत का सबब बनते हैं। लेकिन शर्त है कि अपने मामूलात जो हैं वो इख्तियार किए जाएँ और खालिस अल्लाह की रजा के लिए किए जाएँ। ये नहीं है कि इज्तमा है तो किसी के सामने रूबरू बैठ गए तो करना पड़ गया, फंस गए तो करना पड़ नहीं। अपने जो ज़िंदगी के ज़ाती मामूलात हैं, देखिए हम समझते हैं कि खाना ज़रूरी है, पीना ज़रूरी है, सोना ज़रूरी है, अहल खाना की ज़रूरियात पूरी करना ज़रूरी है, बच्चों की ज़रूरियात पूरी करना ज़रूरी है, घर को तहफ़्फ़ुज़ देना ज़रूरी है, इन सब को ये ज़रूरी समझा जाता है। तो ये अवारज़ात इस फ़ानी जहान के हैं, जब ये फ़ानी जहान की हयात ख़त्म होगी तो ये बातें ख़त्म हो जाएंगी। इसी में अपनी पसंद से अपनी चाहत से जब हम अल्लाह के कुर्ब की जो मेहनत है उसे इससे भी साथ जोड़ लेंगे तो इसका जो जोड़ है या जो इस कैफियत का संग है, ये फानी जहान के साथ फानी हिस्सों में नहीं चला जाएगा, ये लाहद में उतर जाएगा। रोजे माशर साथ हो, उल सरात पर से गुजरते हुए इसकी रोशनी और इसके नूर जो हैं वो साथ होंगे, क्योंकि ये वो कैफियात हैं जिनका तसलसल कलब अथर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चल रहा है। अब यहाँ एक नुक्ता आता है जिसमें उलमाए ज़वायर पर यह बात उनकी तरफ से आ सकती है या किसी के अंदर सवाल उठ सकता है कि जी जो नमाज रोज़ा कर रहा है और फ़राइज़ अदा कर रहा है, मामूलात का ख्याल कर रहा है, तो क्या फिर वो जिक्र नहीं कर रहा है तो बख्शिश नहीं? ऐसी नहीं बात। बात यह है कि अल्लाह करीम तौफीके अमल अता फरमाए, ईमान साले हो, मामलात साले हों, इबादात से मामलात तक एक एक पहलू का ख्याल रखा जाए, अल्लाह करीम उन्हें शर्फ़ कबूलियत अता फरमा दें और दुनिया से बंदा गुजरे अल्लाह करम और एहसान फरमा दें कि उसे बख्श दें, उसकी बख्शिश का सबब है ये फ़राइज़ की अदायगी, दीन इस्लाम पर जो अमल फैलाना। अब जब बात कैफियात की आती है तो कैफियात ऐसा नहीं है कि कैफियात कल्बी जो अमल ज़ाहिर है उससे रोकती है, अमल ज़ाहिर के इख्तियार करने में और मोहब्बत और शौक भी देती है और इखलास से खलूस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो कैफियात का तसलसल है ये अल्लाह करीम कबूल फरमाएं और करम और एहसान फरमाएं, चूंकि उसके करम और एहसान के बगैर कोई चारा नहीं है कि वो कहे कि मैं अपनी इबादात से बख्शिश ले लूंगा, ऐसी नहीं बात। शुक्राने से कोई नहीं निकल सकता तो वो ये बात कहाँ करे कि मैंने जो है अपनी निजात का सबब कर लिया, पहले तो शुक्राना पूरा कर, तो शुक्राना भी ताहयात पूरा नहीं हो सकता। तो जब वहां बात आती है तो बख्शिश के, बख्शिश तो है फिर अल्लाह के मजीद कुर्ब का सबब बनता है, और ये बात और ये नाजक पहलू समझ आ जाए कि ये इम्तिहान गाह है ही ये कि यहीं से अल्लाह के कुर्ब के सबब होने हैं, तो फिर कोई पहलू ऐसा जो और अल्लाह के करीब करता हो वो और करी और जो वो लगता है कि वो जरूरी और अहम है। तो जब बात यहां आती है तो ये कैफियात अगर बरज़ख में बात कुर्ब इलाही की मनाजिल की आखरत में आएगी तो उसके लिए ये कैफियात कल्बी जरूरी। अल्लाह करीम ये नज़ाकतें समझने की तौफीक दे, चे जाए कि हम इन्हें इख्तलाफात पर ले लें, क्योंकि ये इख्तलाफात की बात नहीं, एक ही रास्ता है जिसकी रहनुमाई फरमाई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और एक ही मकसद है कि अल्लाह करीम इबादत के लायक हैं और उसने हमें इबादत को पैदा फरमाया। उसके दरमियान बातें हैं, उसके दरमियान अंदाज हैं, तरबियत है, पढ़ना पढ़ाना है, सीखना सिखाना, ये सारा उस इस सारी हद के तहत आता है, इससे बाहर नहीं। नक्श बनता है जब हम उस शोबे से नहीं होते जिस शोबे पर राय दे रहे होते हैं, तो फिर नक्श आता है। तो फिर जूं जूं मुराकबात बढ़ते हैं, आलम अमर की भी बढ़ जाए तो उससे आगे फिर दवायर जो आते हैं उलूहियत के हैं। उलूहियत के दवायर तक आप जब जाते हैं तो हर सबक के साथ रूह के अंदर और कुव्वत बढ़ती है। जैसे मैंने अर्ज किया, लतीफ़ है, लतीफ तर हो जाती है। ये तर की कैफियत जब दवायरे उलूहियत से अगले सबक पर कोई सालक पहुंचे जो सदियों में कोई शायद पहुंचे, शुमार ये उंगलियां ज्यादा है मेरी याद की, क्योंकि कोई भी पैमाना जो आएगा वो खैरुल कुरून के बाद आएगा, खैरुल कुरून की जो हस्तियां हैं वो इस पैमाने पर नहीं आएगा, चूंकि जो मैयत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जहाँ सारी हयात लगा कर मेहनत कर कर कोई सालिक नहीं पहुँच सकता, वहाँ वो एक नज़र जो है वो उससे आगे उस दर्जे पर पहुँचा देती है कि सारे जहान की उम्रें लगा दो तो वो मकामात जो ईमान के हैं वो हासिल नहीं हो सकते। ये अल्लाह का करम, ख़ास करम और एहसान है कि जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत इस तरह रूबरू नसीब हुई, उसका एहसान अल्लाह करीम के मुकर्रब बंदे चुने हुए हस्ती। तो जब उन दवारे उलूहियत से रूह या असबाक आगे गुजरते हैं तो फिर ऐसी सूरत हो जाती है कि रूह इतनी लतीफ हो जाती है कि लतीफ तरीन भी कह दिया जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि फिर अमूमी सालक की जो रूह है वो उस रूह को भी इसी तरह नहीं देख सकती जैसे हम इस रूह को नहीं देख पाते जारी आंखों। तो फिर कितनी उसके अंदर कुव्वत परवाज बढ़ेगी। ये पैमाना नहीं है कि किसी तरह ये जांचा जा सके। तो ये वो चीज़ें हैं जिनमें अल्लाह करीम तौफीक दे और बंदा मेहनत करके इन चीज़ों को पाए अल्लाह के एहसान से, और अल्लाह करीम तौफीक दे इस दारुल इब्तला से उसके करम और उसके एहसान के सदके इन चीज़ों के साथ बंदा लाहद में उतर जाए। तो इरशाद हुआ सब्बहलिल्लाह मा फिस समावात वल अर्ज, जो मखलूक आसमानों और ज़मीन में है सब अल्लाह की पाकी बयान करते। जो हिस्से आलम खल्क से बाहर हैं इबादत इलाही, न सिर्फ उनकी ज़रूरत है, आप समझ लें कि उनकी खुराक भी यही है और उनके अहकाम की पाबंदी और बका का जो सबूत है वो भी यही है कि अल्लाह की इबादत में महबूब। जब इस आलम खल्क में आते हैं तो इस आलम खल्क में जिनों इन दो किस्म की मखलूक है जो मुकल्लफ है, जिन्हें अल्लाह करीम ने ये चॉइस दी है कि वो किस पहलू को इख्तियार करते हैं, अल्लाह की पसंद में अपनी पसंद को ढालते हैं या अपनी मर्जी को जो है वो जोश देते हैं। इसके अलावा जितनी मखलूक है वो हर लम्हे अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। उलमा तारीफ फरमाते हैं कि किसी चरिंद परिंद में से भी, किसी दरख्त में से भी किसी को मौत वाक़ होती है तो उसका पहला सबब जो होता है वो ये होता है कि उसकी तस्बीह में इनकता आता है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। एक अलग बहस है कि किसको कितनी उम्र और कितनी इस्तेआत और कितना मौका अल्लाह ने दिया, ये एक अलग बात है। लेकिन जब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही होती है, आप किसी परिंदे को ही देख लें कि हम देखते हैं कि वो बीमार होकर मर रहा है, तो जब उसकी सांस टूटने की बात ही आती है तो पहले अल्लाह का जिक्र छूटता है तो फिर मौत वाला, तो बका नहीं है अल्लाह के जिक्र के बगैर। ये दो हिस्से हैं मखलूक के जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कैफियत या ये सूरत दी है कि तुम जो चाहोगे उस रास्ते को इख्तियार करो। और इस कैफियत के लिए हम दुआएं कराते हैं, आप दुआ करें मैं नमाज पढ़ लूँ, आप दुआ करें मैं रोज़ा रख लूँ, आप दुआ करें मैं जिक्र कर लूँ। अजीज इम्तिहान ही तो यही है। अब बात आप कहो कि इम्तिहान आज खुद हल हो जाए, मैं इम्तिहानगाह में हूँ और जो मेरा पर्चा है वो आज खुद ही हल हो जाए, तो फिर और इम्तिहान क्या है? तो जब ये हिस्सा आएगा तो जो मखलूक, अब कितनी मखलूक है, कितनी किस्म की है, ना हम अदद पर बात कर सकते हैं ना हम अकसाम पर बात कर सकते हैं, हमारी जो इल्म की हद है उससे बाहर। और जो मखलूक आसमानों में और जो कुछ जमीन में है, जिसे हम देख पा रहे हैं या जिसे हम नहीं देख पा रहे, कितनी मखलूक है जो पानियों में होगी, कितनी किस्म की मखलूक इसी ज़मीन पर हमारे साथ ज़िंदगी बसर कर रही है और हमें नहीं मालूम। जहान है हर मखलूक, एक अपना जहान है। अब एक एक मच्छर को देख लें, उस मच्छर की ज़िंदगी को घंटों घंटों में है उसकी ज़िंदगी, लेकिन उन घंटों में उसकी पैदाइश भी है, उसकी अफजाइश के सारे हिस्से भी हैं, उसकी खुराक का निज़ाम भी है, उसका एक जहान है जिसमें उसने उड़ना भी है, बैठना चलना उड़ने की कुव्वतें भी पाता है, आगे अपनी नस्ल के तसलसल का सबब भी करता है और फना भी हो जाता है। तो एक मच्छर के जहान को भी देखें तो एक पूरे निज़ाम हयात है उसके पास भी। कितनी किस्म की मखलूक है और कितने निज़ाम है हयात हैं, अल्लाह कादिर है और अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमारे हिसाब से बातें बाहर चली जाती हैं, लेकिन फरमाया जो कोई है सब अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। उनकी हयात का सबब जिस तरह ये सांस ज़रूरी है, इसी तरह अल्लाह की तस्बीह ज़रूरी है। जहाँ इनकता आएगा ये हवा, ये ऑक्सीजन उन्हें सांस मुहैया नहीं करेगी, हयात का इनकता आ जाएगा, तसलसल टूट जाएगा। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो गालिब और हिकमत वाले। अल्लाह करीम की ज़ात वो ज़ात है जो गालिब ऐसी है कि जो न खुद मगलूब होती है और न उसका गलबा जो है वो किसी भी अमर के साथ मुंसलिक है कि जैसे हम कभी गुस्से में आ गए तो हमने कोई काम जो है वो और पहलू से अंजाम दे दिया, और मोहब्बत के पहलू में जज्बात में आ गए तो और पहलू से दे दिया। अल्लाह करीम किसी भी पहलू से मग़लूब होने की सूरत से पाक है। और ग़ालिब ऐसे हैं कि हर शय जिसे ज़ाहिरन हम देख रहे हैं, बिल्कुल जैसे ये कैमरा रिकॉर्डिंग का हमारे सामने मौजूद है, तो हम इसकी सूरत देख रहे हैं कि कैमरे की जो सूरत है ये प्लास्टिक है या जो भी आज की इजादात हैं उनसे बना है, फिर जिस चीज़ पर खड़ा है इसके अंगलारम और इन चीज़ों को अगर देखें तो ज़ाहिरन एक सूरत नज़र आ रही है। लेकिन ये इन चीज़ों के इस मुरक्कब से पहले भी इनकी सूरत थी, शायद अगर प्लास्टिक की को हिस्सा इसमें लगा है तो वो इसी सूरत में नहीं था, इसका असल सूरत कुछ और होगी। कहीं स्टील लगा है या कहीं कोई धात और इस्तेमाल हुई है तो उसकी सूरत भी ये नहीं थी कि इस तरह ये स्टिक बनी होगी और ये इसके खड़ा करने का सबब हो, उसकी भी कोई सूरत हो। तो कोई पहलू हो, हर पहलू पर अल्लाह करीम कादिर हैं और गालिब हैं, और कोई सूरत भी हो, असल गालिब जो ज़ात है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की। तो जब ये समझ लिया जाए कि गालिब अल्लाह की ज़ात है तो फिर इस बात को, ईमान के इस हिस्से को तकवीयत मिलती है कि मैं बंदा हूँ, मेरे जिम्मे बंदगी है, मैं अपनी हदूद से तजावज ना करूँ। चूंकि तखयलाती जो हयात है उसमें हर बंदा ये चाह रहा होता है कि ऐसा हो जैसे मैं चाहता हूं, और जो निज़ाम है कुदरत का ये इतना मरबूत और इतना मुसलसल है कि आप गौर करें कि कहीं हवा चली, अब जहां से हवा चली वो जगह खाली नहीं रहेगी, वहां पीछे से कोई हवा का झोंका पहुंचेगा, और जहां हवा गई उससे जो जो मकसूद था वो भी होगा, लेकिन जहां हवा गई वहां की हवा आगे जाएगी तो उसकी जगह बनेगी। एक मुसलसल और मरबूत निजाम है। जाने कब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निजाम हयात को कायम फरमाया है और जाने कब तक इसको फुर्सत दी है कि ये कब तक रहे। उस सारे निज़ाम हयात जिसकी सदियों का पैमाना हमारे पास नहीं है, हमारी इस्तेआत से ही, हमारी दस्तरत से ही ये पैमाना बाहर है कि हम माप सकें कि इस आलम फ़ानी जहाँ मैं अपनी ख्वाहिशात को चाहता हूँ कि मामलात ऐसे हों जैसे मैं चाहता हूँ, इसकी हयात कितनी है, तसलसल कितना है, हमारी समझ सी बाहर है। उसमें जो 50-60 साल उम्र लेकर आया वो कहता है ऐसा हो जैसे मैं चाहता हूँ, न तेरी समझ इतनी, न तेरी इस्तेआत इतनी, न तू मालिक, न तेरा चाहना कि जिसे तू हतमी शक्ल दे दे। कितने मामलात पेश आते हैं हमारी जिंदगी में कि हम चाहते हैं कि ऐसा हो, और जब वैसा अगर हो भी जाए तो बाद में समझ आती है कि ये तो मैंने नुकसान किया है अपना, ऐसा न करता तो ये नुकसान न होता, बाद में जाकर उसके लिए पहले जो कोशिश कर रहे हैं वो ये थी कि कोई अमर जैसे मैं चाह रहा हूं ऐसे हो तो मुझे फायदा है। जब वो अमर वैसे जहूर हो गया, इतफाकन हो गया, अल्लाह मेहरबानी फरमा दी, कोई सबब भी जिस पहलू को आप ले लें होता तो वही है जो अल्लाह को मंजूर है, इससे बाहर तो नहीं हो सकता। लेकिन हम फिर कहते हैं कि ओहो मैं तो गलती पर था, ऐसे नहीं वैसे होता। और ये जो कारगाह हयात और ये अल्लाह करीम का निज़ाम है, इसमें जरूरत है कि मैं और आप कहें कि नहीं नहीं ये अमर ऐसे नहीं, ऐसे हो, वहां बारिश ना हो, यहां बारिश हो, ऐसी सेहत ना हो, वैसी सेहत हो, ये बीमारी ना हो, वो बीमारी ना हो। हम तो अपनी लाद में उतर जाएंगे, अपनी जरूरियात जो हैं उनसे मुतल्लिक जो कुछ जानना है वो भी पूरा ना जान पाए तो हम लाद में उतर जाएं। तो जो इस कायनात का मालिक है, जिसने इसे बनाया है, जो कादिर मुतलिक है, कोई उसके साथ हमेजश नहीं है उसकी कुदरत, कादिर मुतलिक, वो खूब जानता है, वहां हमारी आराह की जरूरत ही नहीं। वहां जब आरा दी जाती हैं तो उसका असर जात पर आता है, और हम ये समझते हैं कि ऐसा हो और वैसा जब नहीं होता तो फिर دل ٹوٹتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ آج کا مسلمان جو ہے یہ ڈپریشن کا مریض. مسلمان تو ہے وہ جو من و ان مان لے اللہ کی بات. اور جب کہتے ہیں ڈپریس ہو گیا، کیوں ڈپریس ہو گیا جی، فلاں مسئلہ بنا تھا، تو اگر اس کا ایمان ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر اس کا اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی تنگی اور تکلیف ہے تو اس سے آسانی طلب کی جائے، اس کے حضور عرض کیا جائے، دعا مانگی جائے، آسانی مانگی جائے، کامیابی ہے تو کامیابی پہ اس کا شکرانہ ادا کیا جائے. اب جب عملی طور پر بندہ دین سے دور ہوتا ہے تو یہ صورت بدل جاتی ہے اور الٹ جاتی ہے. کوئی کامیابی ہو تو تدبیر، ناکامی ہو تو تقدیر. کامیابی تدبیر کہ میں نے بڑی تدبیر کی، بڑی عقل لڑائی، میں نے بڑی سمجھداری کی بات کی، یہ کامیابی کے پہلو میں سوچا جاتا ہے. اور عطا اللہ فرما رہا ہوتا ہے، جتنے اہل ہم ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کتنے کی اہلیت ہمارے اندر. اور نقصانات جو ہیں، جب ان نقصانات کی بات آتی ہے تو ان نقصانات میں کثیر تعداد میں سبب ہمارے اپنا عمل ہوتا ہے. اب کسی سے تلخ بات کریں تو آپ کے گلے نہیں پڑے گا، تو آپ کو کیا وہ محبتوں کے ہار گلے میں ڈالے گا؟ تو جو انداز کلام تھا جواب اسی طرح آیا، تو اسی طرح کوئی عمل کریں گے کمزور یا غلط کریں گے تو نتائج بھی تو اسی طرح کا آئیں گے. اور اللہ کریم کی ذات حکیم ہے، حکمت والے. ہمارے سامنے جو امور ہیں یہ ایک پہلو کو ہم دیکھتے ہیں، اور قدرت کے امور جو ہیں یہ تکوینی ہوتے ہیں. جیسے سورہ بقرہ میں ہے کہ بنی اسرائیل نے بے شمار سوال کیے بیل کے حوالے سے، رنگ کیسا ہو، عمر کیسا ہو، اوصاف کیسے ہوں. بات تو اتنی ساری تھی نا کہ بیل کو ذبح کرو، اور وہ گوشت کا ٹکڑا اس کا اس مردے کو لگا وہ اٹھ کر تمہیں حقائق بول دے گا کہ واقعہ کیا. بات تو اتنی ساری تھی، نہ کرنے کی وجہ سے، ہیلے بہانوں کی وجہ سے وہ سوالات کرتے گئے. اب جب بندہ ان کے سوالات کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ گمان آتا ہے کہ یہ کتنی زیادتی کر رہے ہیں. اللہ کریم نے انہیں حکم فرمایا، انہی کا مسئلہ ہے، اسی کے حل کے لیے فرمایا، اور انہی کا سوال تھا کہ یہ کیوں اور کیسے ہوا، تو یہ غلط کر رہے ہیں. اب انہوں نے جو کیا وہ ان کو ایک تنگ گلی میں لاتا گیا کہ آخر جس صفات کی بات وہ کر رہے تھے، اس ان ساری صفات اور اس رنگ و عمر کا واحد ایک بیل بچا. پہلے کوئی بھی ذبح کر دیتے، چونکہ بات تو بیل کے ذبح کرنے کی تھی، تو سوالات کرتے گئے کرتے گئے وہ بات تنگی پر آتی 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 آخر ایک جانور پر آ کر ہوگی، اس جیسا پھر شرائط کا پورا اترنے والا اور جانور کوئی نہیں. اور جب اسے خریدنا پڑا تو پھر اسے اس طرح خریدنا پڑا، علماء فرماتے ہیں کہ اس کی پوری کھال میں جتنی دولت آتی ہے اس کے اندر، وہ جو بھی قیمت تھی اس وقت کی، اس کھال کے اس کے اندر جتنی آتی تھی اس پورے بدن میں اتنی ادا کرنی پڑی. تو پہلے تو کوئی عام جانور بھی پکڑ کر کر دیتے تو ہو جاتا. اب یہ تو وہ پہلو ہے کہ یہ دیکھو کتنی زیادتی کر رہے ہیں حکم ماننے میں، ایک بات ہمارے سامنے جو بات. اب اسی پر جو علماء مزید تحقیق تحریر فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو بیل انہوں نے خریدا وہ جن کی ملکیت تھی وہ بچے تھے اور والد ان کے نیک تھے، اور جب وہ آخری وقت آیا تو ایک بچڑا تھا ان کے پاس، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ بہر اللہ اسے میری اولاد کے رزق کا سبب بنانا، اور میرے پاس ایسا کوئی وراثت کا حصہ نہیں جو میں اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جاؤں. اب اس کی قیمت کئی گنا جانور اگر آپ تعداد میں شمار کریں تب بھی وہ زیادہ ہے جو اس موقع پر ملی. قدرت کے امور ہیں، تکوینی ہیں، انہوں نے اپنی نیت بڑھائی، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کریم نے مجبور فرمایا، ان کی اپنی نیت. لیکن دوسری طرف اس بزرگ کی دعا کو شرف قبولیت نصیب ہو گئی کہ وہی ایک جانور ان کی جو اولاد ہے ان کے لیے رزق کی فراوانی کا سبب ہو گیا. تو جب بات حکمت کی آتی ہے تو بے شمار ایسے پہلو ہیں جن کو تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، اور اللہ کریم نے ہمارے لیے کرم اور احسان فرما رکھے ہوتے. बस वसा की ज़रूरत है, एतबार की ज़रूरत है, तवक्कल अल्लाह की जो ज़रूरत है ये है कि अल्लाह करीम की ज़ात पर तवक्कल की सूरत ये हो कि क्या हुक्म है और क्या फरमाया गया है, इससे न को आगे मुझे गरज है न इससे को पीछे गरज है। ये दुनिया की ज़िंदगी भी सहल हो जाती है। और जब दुनिया की लालच में कलाम ज़ाती भी तलावत किया जाता है तो रोज़ माशर काबिल गिरफ्त होगी बात। नोच नोच कर मुंह खाने वालों पर जब सवाल आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अमीन से जब ये पूछा कि ये नोच नोच कर मुंह जो खा रहे हैं ये कौन है और ये क्या है, तो वहाँ बातें जो दीन बयान दुनिया के लिए कर रहे होंगे शब मेराज के वाक़ात में, कि जो दीन की बयान है मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, अगर उसे दुनिया के लिए किया जा रहा है तो ऐसे ही जैसे अपनी जबान अपना बयान अपने चेहरे नोच नोच कर को खा रहा हो पेट भर रहा हो, ये कैसी सूरत हो। बयान तो दीन कर रहा, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा, खाने खुदा में बैठे मेंबर रसूल पर बैठे, लेकिन इस सारे का इनसार उस नीयत पर होगा जिस नीयत पर ये अमल कर रहा है। तो बेशुमार ऐसे पहलू हैं जो हम समझ नहीं पाते, लेकिन अल्लाह करीम से सौदे नहीं, इबादत जो है ये सौदे का नाम नहीं है, ये बिला चूनो चुगो, कोई शर्त ना हो, कोई बात ज़ात की ना हो, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए तो यकीन माने ये दुनिया भी सहल हो जाती है। मुसलमान की बीमारी डिप्रेशन नहीं है, ये गैर मुस्लिम की बातें हैं, या ईमान ना हो उस जगह के ये सवालात हैं कि डिप्रेशन है कि ऐसा क्यों हो गया और वैसा क्यों हो गया और उस चीज़ों से। तो फिर अगर ये महसूस हो रही है कमी बेशी तो इसका मतलब है कि मैं अपनी जो इबादत हैं उन्हें मजबूत करूं, वहाँ जो कमी बेशी है उसे दूर करूं, अकायद से लगे। और जिक्र ऐसी कैफियत है आप यकीन माने ये अकायद को भी मजबूती देती है और मामलात की भी तस्हीह करती है। और ये तजर्बे में आया है, अब किसी काफिर को इलाज के लिए अल्लाह अल्लाह बता दिए ना कि इलाज इलाज है तुम्हारी तकालीफ जो है जो तुम्हें ज़हनी परेशानियाँ इस तरह करके अल्लाह अल्लाह करो। अब देखो तसलसल जो दीन का है सबसे पहले अकायद आते हैं, अकायद रासिख और मजबूत हो और उनकी मजबूती इबादात पर आती है, उसका हिस्सा इबादात में नसीब होता है, और इबादात खालिस होने शर्फ़ कबूलियत नसीब हो तो मामलात साले होते हैं, मामलात में फिर बंदा गलती और ख़ता नहीं करता, कहीं कमी बेशी हो तो तड़प और तकलीफ महसूस करता है, अल्लाह से माफ़ी तलब करता है लेकिन इस तरफ नहीं जाता। अल्लाह करीम की याद ऐसा हिस्सा है कि ये वापस अकायद के अंदर भी मजबूती अता फरमाता है और इबादत और मामलात के अंदर भी जो है वो खालिस नीयत अता होने का सबब बनता है। इसको ज़ाती तौर पर तजर्बा किया है, सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा। ऐसा हुआ कि काफिर मुतलिक काफिर उसने तकलीफ दुनिया और बीमारी जो दुनिया के हालात की है उसको दूरी के लिए अल्लाह अल्लाह इख्तियार किया, अल्लाह अल्लाह का नाम ले तरह पुकार तर आखिर कलमा पढ़ गया, चूंकि नाम अल्लाह करीम का जाती है, जब अल्लाह करीम की जाती नाम की पुकार होती है तो असर करना शुरू हो गया। तो हमें तो अल्लाह ने एहसान फरमाया कि हमें तो अल्लाह जल्ला शानू ने कलाम जाती और कैफियात कल्बी की ये शनासाई दी कि हम तो बातें गुरबे लाई के मनाजिल की कर रहे हैं, तो जब ये हिस्से मजबूत होते हैं तो दुनिया जो है दिल की है वो बदल जाती है, उसका मौसम और हो जाता है, उसका मौसम दुनिया मकसूद नहीं करता, वो देख तो यहां रहा है जैसे मैं और आप हमारी आंखें चार हैं लेकिन सामने रोजे माशर और उखरी हयात होती है, कलाम आपसे समात आपकी محفل جان فانی کی لیکن نظر آخرت پر, روبرو آخرت, روز محشر, ابدی حیات کے حصے. تو یہ کہنے کی باتیں ہیں, یہ نصیب ہو تو بہت بڑا اس کا احسان ہے. اللہ کریم توفیق بخشے, ہم کمزور ہیں, ہمارے حال پر رحم فرمائی رکھے. تو ایسے حکیم ہیں, حکمت والے ہیں. لہو ملک السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے. یہ وقتی باتیں ہوتی ہیں کہ کسی کو وقتی طور پر کوئی حصہ دیا جائے یا ذمہ داری دی جائے, چونکہ جو کچھ یہاں ہے یہ فانی جہان ہے. جب یہ جہان ہی فانی ہے تو اس جہان فانی میں کوئی ایک صورت دوام کی کیسے ہو سکتی ہے؟ عقلی طور پر بھی بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک برف ہے, اس کی کوئی صورت بنا کر آپ ہاتھ میں پکڑ لیں, چاہے کتاب بنا کر ہاتھ میں پکڑ لیں اور دھوپ پر کھڑے ہو جائیں تو کہیں جی برف تو پگھلتی ہے, جو صورت میں نے بنائی ہے یہ صورت نہیں پگھلے گی. میاں جب برف ہی نہیں رہے گی تیری بنائی ہوئی صورت کہاں رہے گی؟ تو یہ جان ہے ہی فانی, تو اس میں خواہشات میں کسی چیز یا کسی حصے کی کوئی صورت بنائیں گے تو وہ کیسے رہے گی جب اصل نہیں رہے گی؟ تو جو اصل نہیں ہے تو اس سے مزید آگے جو نقل ہے وہ کہاں رہے گی؟ تو جب یہ جہان ہی فانی ہے تو جو کچھ اس کے تحت خود بندہ تصوراتی جہان بنائے گا وہ تو پہلے اس کا وجود ہی نہیں ہے, اس کا تو پھر وجود ہے. بے شک وقت مقررہ کے لیے ہے لیکن ایک وجود تو ہے. تو جو کچھ تخیلاتی دنیا میں ہم بنا رہے ہیں وہ تو اس کی تو صورت بھی کوئی نہیں. تو جب یہ مان لیا جائے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے تو پھر ساتھ لا محالہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں. اور یہ جو لفظ میں ہے یہ اتنا شدید ہے, اتنی ایک بری بیماری ہے اور اتنی ایک بڑا کینسر ہے یہ مزاج کا کہ سارے حصے جب صوفی پر بحث فرماتے ہیں نا, مشائخ بحث فرماتے ہیں, جو تحقیق تحریر کی گئی ہے, جو اعمال پر بات کی ہے, اب جو بندہ ذکر شروع کر دے یہ بات بحث میں نہیں آتی کہ وہ جی نماز نہیں پڑھتا ہو, ذاکر ہی تب ہے کہ اس کی نمازیں بھی پوری ہو گئی. دین کے اصول و ضوابط عالم نہیں ہے لیکن ضروریات زندگی سے متعلق احکامات الہی وہ جانتا ہوگا, اس لیے جانتا ہوگا کہ اسے معلوم ہے. دنیا کے کسی ملک میں جائیں, مجھے سفر کا موقع ملتا ہے, بے شمار ممالک میں جاتا ہوں, تو وہاں یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی قانون کی خلاف ورزی میں یہ چھوٹ دے دیں کہ جی آپ چونکہ یہاں مسافر آئے ہیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے اس لیے چھوٹ ہے. جو وہاں جاتا ہے وہ اپنے ذمے لے کر ایک ایک چیز پوچھتا ہے کہ اگر میں نے گاڑی چلانی ہے تو اس کے اصول ضوابط کیا ہیں, اور اگر کہیں میں نے جاب یا کاروبار کرنا ہے اس کی صورت کیا ہے, اور ان ایک ایک حصوں کو خود جاننے کی کوشش کرتا ہے, اور جاننے کے بعد پھر ایک ایک کاغذ اور فائل کی تکمیل کے بعد اس امر کے لیے جاتا ہے. تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ تم آ گئے ہو تو تم ہو. تو جب بندہ اللہ کی محبت میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ ڈھونڈتا ہے کہ میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے, میری کوئی بات ایسی نہ ہو جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا, میں کوئی ایسا عمر نہ اختیار کر. تو جب وہ اس ڈھونڈ میں نکلتا ہے تو پھر اس کا جواب قرآن و سنت ہے. تو وہ اپنی ضروریات زندگی میں کوئی پہلو پھر تشنا نہیں چھوڑتا, وہ ڈھونڈتا رہتا ہے, اپنی کمی بیشی کو جانچتا رہتا ہے, یہ تڑپ اس کو اس ترازو کو لگائے رکھتی ہے, تو وہ دین کو جاننے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کہیں کمی بیشی نہ آ جائے, کوئی غلطی نہ ہو جائے. لیکن جو بات یہ کر رہا ہوں نا کہ کمزوریوں اور فساد کیے ہیں, اس میں لفظ میں اتنی بڑی خرابی ہے کہ وہ صوفیاء لکھتے ہیں اور مشائخ بیان کرتے ہیں کہ جب سالک جو ذکر میں مشغول ہے, جسے ذکر کرنا نصیب ہو گیا, یہ نہیں ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے گا, یہ نہیں ہے کہ وہ فوش کلام کر رہا ہوگا, یہ نہیں ملے گا کہ بندہ کہے کہ جی وہ کسی کا رزق کھا کر آرام کھا رہا ہے, آہستہ آہستہ کمی بیشی وہ چھوڑتا جائے گا, چھوڑتا جائے گا, ہر پہلو کو وہ جانچتا رہے گا, کمی فرماتے ہیں جو سب سے آخر میں جا کر صوفی سے کمزوری نکلے گی وہ یہ انا ہوگی. اتنی بری یہ ہے کہ بندے کے اندر ایسی انا اور ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ عبادت میں بھی وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ جیسے میں عبادت کر رہا ہوں ایسا اور کوئی نہیں, اور میں یہاں بیٹھا ہوں, میں اپنے شیخ کے روبرو بھی یہاں بیٹھا رہا, وہاں بھی جو صورت میرے اندر تھی اور جہاں بھی آ کر جو واپس میں سب کو دیکھ رہا ہوں, میں آخرت کو جب بھی دیکھتا ہوں تو سوائے اللہ کی رحمت کے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ یہ واحد سبب ہے کہ بخشش ہو سکتی ہے, اور کوئی صورت نہیں. تو وہاں بیٹھ کر بھی تو میں یہ دیکھ رہا تھا. اگر میں یہاں بیٹھ کر یہ کہوں کہ اتنی مخلوق خدا ہے اور دنیا میں گلوبلی ہے, اور الحمدللہ یہاں پر جب اللہ ہو کا ورد ہوتا ہے تو اس کی صورت گلوبلی ہو جاتی ہے, پوری دنیا میں ساتھی منسلک ہوتے ہیں. شام کا جو ذکر ہو رہا ہوتا ہے اس میں دنیا میں اور بے شمار انداز جو آج کی ایجادات ہیں ان کے تحت ہو رہا ہوتا ہے. ایک تو پال ٹاک پر ذکر ہو رہا ہے نا جی, اس کے ساتھ اپنا جو ویب سائٹ کا میسنجر ہے اس پر ہو رہا ہے, اور جو فیس بک کے سے ہیں ان پر ہو رہا ہے, جو واٹس ایپ کے ہیں ان پر ہو رہا ہے, ساتھ میسیجز جو ذاتی طور پر چل رہے ہیں ان پر ہو رہا ہے. تو وہ شمار نہیں ہوتا کہ کتنی مخلوق ہے اور کس خطے اور کس حصے میں بیٹھی وہ اللہ کر رہی. تو یہاں اس صورت میں آ کر بھی اگر بندے کو یہ گمان ہونا شروع, اتنی مخلوق کو تو میں ذکر کرا رہا ہوں, ان کے تو اسباق روحانی طور پر چلا رہا ہوں, اب جب بالا منازل کی بات آتی ہے تو بالا لفظ تو شاید یہ تین حرف میں ہو, اس کی وسعت کی سمجھ نہیں آتی, پیمانہ نہیں ہے کوئی جو اس کو ماپ سکے. تو جی وہاں ان کو توجہ دے کر ذکر کرا رہا ہوں تو میرا تو کیا جی, میں تو بخشا بخشایا. بڑی سادہ سی بات, ہم کمزور ہیں, سوائے اللہ کے کرم اور اس کے احسان کے کوئی چارہ نہیں. اور جب ذکر کرنا نصیب ہوتا ہے تو سوچ یہ نہیں ہوتی کہ آپ کو جی یا ساتھیوں کو ذکر کرا کر لے جا رہا ہوں, ہمیشہ یہ چیز ذہن میں ہوتی ہے کہ اس سالار اللہ کا شکر ہے میرا ذکر بھی ہو رہا ہے. اب یہ بڑے نازک سے معاملے ہیں. اب یہ جو بات میں نے آپ سے کی ہے میری ذاتی, دل نہیں تھا کہ کروں, کی بات سمجھانے کو ہے کہ یہ بڑے نازک پہلو ہیں. اگر جو کچھ میں بولا ہوں یہ میں نہ بولوں تو آپ جانتے تھے کہ میں کیا سوچ کر ذکر کرا رہا ہوتا ہوں, یا میں کیا سوچتا ہوں وہاں جب بیٹھا تھا ایک ساتھی کی حیثیت سے, چونکہ میں نے ایک ورکر کی حیثیت سے بھی کام کیا ہے, اور بیٹے اور رشتے کی تو بات ہے, ایسا میری زندگی میں موقع آیا ہے کہ ذمہ دار جو پروگرام کر رہے تھے ان کے کہنے پر آگے عمل کیا, اور یہ جرت نہیں تھی کہ ان سے پوچھا جائے جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہاں جو حکم ہے اس کی تعمیل کرنی ہے, اس لیے کہ وہ شیخ کا حکم تھا وہ مقرر. ذمہ داران کے درمیان بھی رہ کر کام کیا, پھر ذمہ داران کے اوپر ذمہ داری کی حیثیت پر رہ کر بھی کام کیا, اور آج ایک شیخ کی حیثیت سے واپس جو ہے ذمہ داریاں نبھانے کی بھی صورت سامنے. ان ساری صورتوں میں, ان سارے پہلوؤں میں, کہیں بھی وہاں سے لے کر یہاں تک یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ بندہ کہ نہیں جی نہیں میں تو بخشا بخشایا انہیں, سوائے اللہ کی رحمت کے اور کوئی چارہ کار نہیں. ہر ایک کا نصیب ہے, اللہ نے عطا فرمانا ہے اس کی مخلوق, تو مخلوق اور خالق کے بین آ جائیں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ رحیم ہے کریم ہے, اس کی شان ہے. اتنوں کو عطا فرمائے گا اس صدقے بخشش کا سبب ہو جائے. تو یہ وہ صورتیں ہیں جن حقائق کو جاننا ضروری ہے, چونکہ نہیں سمجھ آتی بندہ اپنی منازل کی جو بات ہے اس میں اس طرح پہنچ, جتنی میری منازل ہے اتنی کسی کی بھی نہیں. ہماری منازل کیا ہے؟ اولیاء اللہ کے واقعات میں بے شمار واقعات ہوتے ہیں, تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ان واقعات کو جب بیان کیا جائے تو ان کے حال دل سے واقفیت اور وہ کیسے دنیا کو دیکھتے. اسی طرح ایک بزرگ کے واقعات حضرت بیان فرما رہے تھے, وہ فرماتے ہیں کہتے ہیں اللہ کریم سے دعا کروں گا کہ مجھے ایک دفعہ دوزخ میں بھیج دے. حضرت کیا کہہ رہے ہیں, سادگی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں لوگ بڑے جلیں گے, ایک دفعہ وہاں پہنچ گئے نا صرف ایک دفعہ کہوں گا اللہ تو دوزخ کی بھی پرخچے اڑ جائیں گے, مخلوق بچ جائے گی. अब बात ये नहीं है कि वो कहां की क्या बात, बात यह है कि अल्लाह से ताल्लुक जो है उसमें कितनी मजबूती और राशिख होने को ने मालूम है कि वो जिस चीज की खौफनाकी भी बयान की जा रही है अल्लाह का ताल्लुक और उसका नाम इतना मजबूत है उसकी पर खर्चे उड़ा देगा। तो जब अपनी तरफ हम देखते हैं ना तो अपने वरा तकवा में अपनी बुजुर्गी में बुजुर्गी झाड़ने में लग जाते हैं कि मैं जी देखें ऐसा ना करें वैसा करें, दिल उस वक्त दस्तक दे रहा होता मियां तजावज कर रहे हो, मियां अपनी अनाप बयान कर रहे हो और जितनी अनाप बयान की जाए ये ऐसा मोजी पौधा है, ये ऐसा ऐसा मुजी बीज है कि इसे जितना बयान किया जाए जहां ये भी कर रहा हूं वो भी, ये और बढ़ता है और तवाना होता है। जब फकत बात ये हो कि आसमानों और जमीन की बादशाही उसकी है तो फिर जो कुछ है वो भी तो उसी का है, तो फिर मैं क्या हूं, मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ है वही है। और बंदा अपनी तरफ जब देखे तो समझे कि मैं कुछ भी नहीं। तो आज का जो पीरियड है इंशाल्लाह आधा फिर कल बात करेंगे, क्योंकि आधा हिस्सा रह गया है अल्लाह करीम को मंजूर हुआ है जिंदगी रही तो इंशाल्लाह अगला हिस्सा कल अर्ज करूँगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।